ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक की सतत निगरानी करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में चल रहे प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन आज वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की निकिता ने स्वर्ण पदक जीता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकताएं हैं। श्री मोदी ने ये बात कल शाम कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य संघर्ष के समय देश की तैयारियों की समीक्षा करना था। श्री मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की गति तेज करने का आग्रह किया और पाइप वाली प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने को भी कहा। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनजर आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उच्च अधिकारियों, कमिश्नरों, आईजी, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान श्री साय ने पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रसोई गैस व पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और सप्लाई की सतत निगरानी करने तथा जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक समय पर सेवाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य में आपूर्ति व्यवस्था सुचारू और सामान्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
प्रदेश के सीएस और इंडियन ऑयल के अधिकारी, एलपीजी गैस के अधिकारी और सभी संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर सबका बैठक लिए हैं और एक एक जिले की रिपोर्टिंग लिए हैं और ये जो इंडियन ऑयल के हैं, एलपीजी गैस के जो अधिकारी हैं उनसे सारी जानकारी लिए हैं। तो कोई किसी तरह की मतलब शॉर्टेज नहीं है, खाली एक अफवाह से बचने की आवश्यकता है और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, केंद्र सरकार की संस्थाओं, सैन्य और अर्धसैनिक बलों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों और एयरपोर्ट कैंटीनों में गैस आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आपूर्ति पूरी तरह सुचारू और सामान्य है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग सामान्य रूप से संचालित है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 45 दिन तथा सामान्य गैस कनेक्शन के लिए 25 दिन की समय सीमा निर्धारित है, उसी के अनुरूप बुकिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उर्वरकों की होल्डिंग पर रोक लगाई जाए और दैनिक स्टॉक की नियमित समीक्षा की जाए। श्री साय ने कहा कि सभी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश भर में 335 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कालाबाजारी की कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि जमाखोरी की सूचना पर की गई कार्रवाई के दौरान करीब 4000 गैस सिलेंडरों को जब्त गया तथा 97 FIR दर्ज की गई है। मुख्य सचिव विकासशील ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों की सतत निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता घरेलू गैस से संबंधित आपूर्ति से संबंधित समस्याओं, शिकायतों और कालाबाजारी की सूचना 1800233366 पर दे सकते हैं। देश को माओवाद से मुक्त करने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर सोमवार 30 मार्च को लोकसभा में चर्चा होगी। संसद के निचले सदन की कार्यसूची के अनुसार इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा नियम 193 के तहत शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। इस दौरान सरकार की रणनीति, सुरक्षा अभियानों और पुनर्वास नीतियों पर सदन में विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में चल रहे प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन आज तैराकी, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल और कुश्ती के मुकाबले हो रहे हैं। आज रायपुर में हुई वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की निकिता ने 77 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं तैराकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अनुष्का भगत ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। ये अनुष्का भगत का चौथा रजत पदक है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता के लीग मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया है। भारोत्तोलन प्रतियोगिता के तहत पुरुष वर्ग के 88 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के रूबा ताडू ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 274 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी तरह भारोत्तोलन प्रतियोगिता के सीनियर पुरुष 94 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी लालू ताकू ने 50 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारोत्तोलन प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की वेटलिफ्टर अनाई वांगसू ने 58 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत आज तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने 123 अंकों के साथ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं असम 69 अंकों के साथ रनर अप और ओडिशा 31 अंकों के साथ सेकेंड रनर अप रहा। इसी तरह तैराकी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में ओडिशा 102 अंकों के साथ चैंपियन बना, जबकि कर्नाटक 50 अंकों के साथ रनर अप और छत्तीसगढ़ 38 अंकों के साथ सेकेंड रनर अप रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कांकेर जिले में आज 3 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें एसीएम राधिका कुंजाम, संदीप कड़ियाम और रेनू पद्दा शामिल हैं। इन माओवादियों ने 3 हथियार भी सौंपे हैं। इनमें 2 एसएलआर और 1 नग 303 राइफल हैं। रायपुर रेल मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग दल्ली राजहरा सेक्शन में 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 8 स्टेशनों के प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है। इसमें स्टेशन मरौदा, पवारा, रिसामा, गुंडरदेही, सिकोसा, लाटाबोर, भैंसबोर और सलाई टोला शामिल हैं। साथ ही यात्री ट्रेनों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर और गुदुम स्टेशनों पर दूसरा प्लेटफार्म बनाने की योजना भी स्वीकृत हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, हल्की से मध्यम वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु होते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से बदली बारिश की स्थिति बन रही है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभाग तथा उससे लगे जिले रहेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्वदेशी मेले में लगी प्रदर्शनी और स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयनित 430 अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 1 और 2 अप्रैल को नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम दुर्पा में आज 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिलों में सवार 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नगर पंचायत द्वारा नाविकों की नाव और मोटरबोट को सील करने के विरोध में नाविकों का धरना प्रदर्शन 3रे दिन भी जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक की सतत निगरानी करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में चल रहे प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन आज वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की निकिता ने स्वर्ण पदक जीता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।